ये रेडियो नेपाल है। हिंदी समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं मीनू प्रधान। आरंभ में आज के मुख्य समाचार शीर्षक। प्रधानमंत्री ने कहा, तेजाब प्रहार करने वालों के ऊपर अमानवीय और जघन्य अपराध मामले के तहत कार्रवाई के लिए अध्यादेश के जरिए तत्काल लाया जाएगा नया कानून। देश भर में अब तक कोरोना से संक्रमित हो चुके लोगों की तादाद हुई 50,000 के ऊपर। पिछले 24 घंटों में देश भर में 1818 लोग हुए कोरोना मुक्त। नियमित अंतर्राष्ट्रीय उड़ान शुरू किए जा चुके देशों में अतिरिक्त उड़ान की अनुमति देने की सरकार ने की है तैयारी। और दुनिया भर में कोरोना संक्रमितों की तादाद बढ़कर हुई 2,81,00,000 से अधिक। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने कहा, एसिड से हमला करने वालों पर अमानवीय और जघन्य अपराध करने वालों के तहत कार्रवाई करने के लिए अध्यादेश के जरिए तत्काल ही नया कानून बनाया जाएगा। आज प्रधानमंत्री निवास बालवाटार में कानून, न्याय तथा संसदीय मामला मंत्री और पीड़ितों की सहभागितामें आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ओली ने कहा कि वैसे अपराधियों की संपत्ति पर रोक लगाकर पीड़ित का इलाज करवाने, क्षतिपूर्ति दिलवाने और भरण पोषण करवाने जैसी व्यवस्था की जाएगी। एसिड हमलों के 12 पीड़ितों की सहभागिता में हुए इस कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री ने यह ऐलान भी किया कि वीर और शिक्षण अस्पताल में पीड़ितों के इलाज की व्यवस्था की जाएगी। साथ ही पीड़ित के सभी खर्च और नियमित प्रयोग की जाने वाली दवा का खर्च भी मुहैया कराया जाएगा। इसके अलावा तेजाब पीड़ितों में से जो पढ़ना लिखना चाहता है उसे निशुल्क शिक्षा, जरूरी तालीम, रोजगारी व्यवसाय और आजीविका की व्यवस्था भी सरकार की ओर से किए जाने की बात उन्होंने कही। साथ ही उन्होंने हर साल 10 सितंबर को तेजाब आक्रमण के विरुद्ध दिवस के रूप में मनाने का आह्वान भी किया है। नेपाल में कोरोना वायरस से अब तक संक्रमित होने वालों की संख्या 50,000 से अधिक हो गई है। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय की नियमित प्रेस ब्रीफिंग के क्रम में आज मंत्रालय के प्रवक्ता प्राध्यापक डॉ. जागेश्वर गौतम ने ये बात कही। उनसे मिली जानकारी के मुताबिक आज देशभर में 1,246 नए लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। इसके साथ ही अब तक देशभर में कोरोना से संक्रमित होने वालों की तादाद 50,465 हो गई। वहीं आज 5 संक्रमितों की मौत भी हुई है, जिनमें काठमांडू के 3 और चितवन व कपिलवस्तु के 1-1 व्यक्ति शामिल हैं। आज देश भर में कोरोना वायरस के संक्रमण से 1818 लोग भी मुक्त हुए हैं। इसे मिलाकर देश भर में कोरोना मुक्त होने वालों की संख्या 35,700 हो गई है। इस तरह नेपाल में संक्रमण मुक्त होने वालों की दर 71% दर्ज की गई है। सरकार नियमित अंतर्राष्ट्रीय उड़ान शुरू हो चुके देशों से अतिरिक्त उड़ानों की अनुमति देने की तैयारी में है। पर्यटन मंत्री योगेश भट्टराय से मिली जानकारी के मुताबिक उप प्रधानमंत्री, परराष्ट्र मंत्री, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मंत्री और श्रम मंत्री के बीच हुए उच्च स्तरीय परामर्श के बाद अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की संख्या बढ़ाने की तैयारी की जा रही है। सरकार ने वैकल्पिक प्रणाली से होने वाली पढ़ाई लिखाई को शैक्षिक सत्र में गणना करने के साथ विद्यार्थी शिकायत सहजीकरण निर्देशिका 2077 जारी की है। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मंत्री गिरिराज मणि पोखरियाल द्वारा भाद्र 19 गति को स्वीकृत नई निर्देशिका को मंत्रालय ने आज साझा किया है। कोरोना महामारी के बढ़ते जोखिम के कारण विद्यालय न खुल पाने की मौजूदा हालत और अन्य प्राकृतिक आपदा के समय भी इस तरह के उपायों को मान्यता देने के हिसाब से निर्देशिका जारी की गई है। इस निर्देशिका के जारी होने के बाद मौजूदा शैक्षिक सत्र में विद्यार्थी दाखिला, तथ्यांक संकलन, निजी विद्यालयों में स्थानीय तह द्वारा निर्धारण के हिसाब से शुल्क वसूलने लगायत प्रक्रिया में विद्यालयों को आसानी होगी। इससे पूर्व बीते जेठ 18 गति को वैकल्पिक प्रणाली से विद्यार्थी की सिखाई सहजीकरण निर्देशिका 2077 जारी हुई थी, जिसके तहत आषाढ़ 1 गति से वैकल्पिक विधि से पढ़ाई लिखाई की अनिवार्यता कायम की गई थी। समाचार रेडियो नेपाल से प्रसारित किए जा रहे हैं। समय है व्यापारिक विश्राम का।
14-15 बजारमा नयाँ के छैन। नेपाल टेलिकमका विभिन्न सेवाका अफरहरू सस्तो, साह्रै सस्तोमा खरिद गर्न परेमा स्टार 14-15 ह्यास डायल गर्नुपर्ने रहेछ। त्यही भएर कण्ठ पारिराख्या
हो र दाई।
त्यति मात्र हो र भाइ, नेपाल टेलिकमले विभिन्न समयमा ल्याउने विभिन्न अफरको बारेमा थाहा पाउन पनि *1415 ह्यास डायल गर्नुपर्ने रहेछ नि त।
1415 1415 1415 1415। मलाई पनि कण्ठै भयो दाई।
नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार। अब बाकी समाचार। मैथिल समुदाय और थारू समुदाय में कल से शुरू हुए महान पर्व जीतिया अंतर्गत आज इन समुदायों की महिलाओं ने भगवान जीमूत वाहन का व्रत रखकर विधि पूर्वक उनकी पूजा आराधना की। विश्वविद्यालय पंचांग और मिथिला कैलेंडर के अनुसार आज लिए गए व्रत को कल सुबह 6 बजे के बाद संपन्न किया जाएगा। इसी बीच जीतिया पर्व के अवसर पर शुभकामना देते हुए राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने कहा कि इस तरह के सांस्कृतिक पर्व से परिवार और समुदाय के सदस्यों के बीच आपसी प्रेम, विश्वास, सद्भाव और सहयोग की भावना प्रगाढ़ बनती है। इसी तरह प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने भी शुभकामना देते हुए कहा कि जीतिया पर्व ने हमेशा ही परस्पर सद्भाव और प्रेम का संदेश प्रवाह किया है। साथ ही उन्होंने वर्तमान अवस्था में COVID-19 की महामारी के मद्देनजर सभी से इस महान पर्व को घर पर ही सुरक्षित रहकर मनाने का आग्रह भी किया। संघीय संसद की संसदीय सुनवाई समिति ने जर्मनी, बेल्जियम और पाकिस्तान के लिए प्रस्तावित नेपाली राजदूतों के नाम अनुमोदित किए हैं। ये जानकारी सभापति लक्ष्मण लाल कर्ण ने दी। सरकार ने परराष्ट्र मंत्रालय के सहसचिव गेहेन्द्र राज भंडारी, तापस अधिकारी और रामकाजी खड़का की राजदूत पद के लिए सिफारिश कर सुनवाई के लिए समिति में भेजा है। बता दें कि प्रस्तावित राजदूतों को संसदीय सुनवाई और नाम अनुमोदित होने के बाद सरकार की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त करने की संवैधानिक व्यवस्था है। अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोग ने संघीय आयोजना क्रियान्वयन इकाई विराटनगर के तत्कालीन सीनियर डिवीजनल इंजीनियर काशी प्रसाद गुप्ता के विरुद्ध 16,72,56,000 से ज्यादा गैर कानूनी संपत्ति अर्जन करने के आरोप में विशेष अदालत काठमांडू में मुकदमा दर्ज किया है। इंजीनियर गुप्ता पर सार्वजनिक पद पर रहते हुए पद का दुरुपयोग कर 16,72,00,000 से भी ज्यादा गैर कानूनी संपत्ति अर्जन कर अपनी पत्नी सहित 12 परिजनों के नाम पर संपत्ति रखने की पुष्टि होने के बाद अख्तियार ने दाहाल सहित दाहाल की पत्नी श्रीमती मीता गुप्ता समेत के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। ये जानकारी आयोग के प्रवक्ता तारानाथ अधिकारी ने दी। नेपाली कांग्रेस के सभापति शेर बहादुर देउबा ने जीतिया पर्व के अवसर पर संपूर्ण मैथिल और थारू महिलाओं को सुख, शांति और समृद्धि की शुभकामना दी है। सभापति देउबा ने आज शुभकामना संदेश देते हुए जीतिया पर्व ने अपने अपने धर्म, संस्कृति और रीति रिवाज और परंपरा के संरक्षण को प्रेरित करते हुए जनजीवन में गहरा छाप छोड़ा है। गृह मंत्रालय ने चीन के साथ जुड़े नाखो, तापलेजुंग, ओलांगचुंग गोला और भारत की सीमा से जुड़े दारचूला के दत्तू में सीमा निगरानी चौकी VOP की स्थापना के लिए स्वीकृति प्रदान की है। अब अंतर्राष्ट्रीय प्रसंग। दुनिया में कोरोना वायरस से अब तक 2,81,11,000 से अधिक लोग संक्रमित हो चुके हैं। इनमें से 2,01,72,000 से ज्यादा लोग ठीक भी हुए हैं। वहीं 9,09,000 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। कोरोना से सबसे अधिक प्रभावित देशों में अमेरिका पहले स्थान पर है, जहां संक्रमितों की संख्या 65,59,100 से अधिक है, जबकि मरने वालों की संख्या 1,95,000 से अधिक है। वहीं भारत में संक्रमितों की संख्या 44,94,000 से अधिक है, जबकि मरने वालों की संख्या 75,000 से अधिक है। वहीं ब्राजील में 41,00,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हैं, जबकि मरने वालों की संख्या 1,28,000 से ज्यादा है। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 30 से 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 19 से 21 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 31.2 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 19.8 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार शीर्षक एक बार फिर से। प्रधानमंत्री ने कहा, तेजाब प्रहार करने वालों के ऊपर अमानवीय और जघन्य अपराध मामले के तहत कार्रवाई के लिए अध्यादेश के जरिए तत्काल लाया जाएगा नया कानून। देश भर में अब तक कोरोना से संक्रमित हो चुके लोगों की तादाद हुई 50,000 के ऊपर। पिछले 24 घंटों में देश भर में 1,818 लोग हुए कोरोना मुक्त। नियमित अंतर्राष्ट्रीय उड़ान शुरू किए जा चुके देशों में अतिरिक्त उड़ान की अनुमति देने की सरकार ने की है तैयारी। और दुनिया भर में कोरोना संक्रमितों की तादाद बढ़कर हुई 2,81,00,000 से ऊपर। इसी के साथ हिंदी समाचार बुलेटिन से मुझे आज्ञा दीजिए, सुनते रहिए रेडियो नेपाल। शुभरात्रि।